रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले थे और बाहर का चांद कमरे में हल्की सी चांदी बिखेर रहा था। कमरा उतना ही शांत जैसे सारी दुनिया सो गई हो। बिस्तर पर दो लोग, लेकिन दुनिया के सबसे दूर खड़े। विश्वनाथ अपनी तरफ करवट लेकर गहरी नींद में था। सांसें भारी और थकी हुई, जैसे पूरे दिन की लड़ाई ने उसकी देह को निचोड़ दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ श्यामली, उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं। तकिए पर सिर रखा था, पर हर कुछ सेकंड में वो पलंग की चादर को मुट्ठी में दबा लेती। वो अंधेरे में छत को देखती रही। कुछ पल, कुछ मिनट, कितना समय बीत गया उसे खुद पता नहीं। सारा शरीर थका था, पर दिमाग जाग रहा था, चुपता हुआ, तड़पता हुआ, सवालों से भरा। क्यों इस घर में सब उस कमरे का नाम लेने से डरते हैं? क्यों हर कोई चुप हो जाता है? क्यों विश्वनाथ ने इतना भड़क कर उसे रोका? अंदर एक आवाज़ उठी, डर से खामोश रहने वाली नहीं हूं मैं। वो धीमे से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वही दरवाज़ा, वो कमरा जिसकी बात करने पर भी घर कांप उठता है। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस खींची। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता उभर आई। शायद मुझे सच पता नहीं करना चाहिए, उसने मन में खुद से कहा। पर उसी पल दूसरे विचार की आग दौड़ गई। क्यों नहीं, उसने मुट्ठियां भींच ली। क्यों डरूं? आखिर मैं इस घर की बहू हूं, नाम की ही सही, पर हूं। क्यों सिर्फ वो तय करे कि मुझे क्या जानने का हक है और क्या नहीं? उसकी सांसें तेज हो गईं। गुस्से और चोट के बीच उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मुझे अपमानित किया, जैसे मैं कुछ नहीं, जैसे मैं किसी चीज की हकदार ही नहीं। ठीक है विश्वनाथ जी, अब मैं खुद तय करूंगी। वो धीरे से बिस्तर से पैर नीचे रखती है। गद्दा हल्का सा हिला, लेकिन विश्वनाथ सोया ही रहा। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। चांदनी में उसका चेहरा सख्त और शांत दिख रहा था, जैसे वो किसी गहरे तूफान के बाद की नींद में डूबा हो। श्यामली की आंखों में अचानक एक शरारती चमक उभर आई, एक साहसी, खतरनाक और तेज। उसके होठों पर हल्की तिरछी शैतानी मुस्कान आई। क्या समझते हैं आप खुद को, उसने बेहद धीमे मगर चुपते स्वर में फुसफुसाया। बहुत बड़े आए, अब देखिए आपकी बहू क्या कर सकती है। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन पैरों में अब डर नहीं था, सिर्फ फैसला। वो धीरे से बिस्तर से पैर नीचे रखती है। गद्दा हल्का सा हिला, लेकिन विश्वनाथ सोया ही रहा। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। चांदनी में उसका चेहरा सख्त और शांत दिख रहा था, जैसे वो किसी गहरे तूफान के बाद की नींद में डूबा हो। श्यामली की आंखों में अचानक एक शरारती चमक उभर आई, एक साहसी, खतरनाक और तेज। उसके होठों पर हल्की तिरछी शैतानी मुस्कान आई। क्या समझते हैं आप खुद को, उसने बेहद धीमे मगर चुपते स्वर में फुसफुसाया। बहुत बड़े आए, अब देखिए आपकी बहू क्या कर सकती है। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन पैरों में अब डर नहीं था, सिर्फ फैसला। वो झुककर धीरे धीरे गद्दे के किनारे की ओर बढ़ी। सांस थमी हुई, एक पल के लिए लगा जैसे कमरे में हवा रुक गई हो। विश्वनाथ सोते हुए करवट बदला और श्यामली का दिल उछल कर गले में आ गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जगह पर जमकर खड़ी हो गई। वो एक पल उसके चेहरे को देखती रही, शांत, बेरहम और बेहद ताकतवर दिखता चेहरा, पर आज उसे उससे डर नहीं लगा। अब मैं हर हाल में पता करूंगी, उसने मन में कहा। मैं भी देखती हूं कौन मुझे रोकता है। अचानक उसे याद आया, चाबी, उस कमरे की चाबी कहीं ना कहीं इसी कमरे में होनी चाहिए। और उसे पता था विश्वनाथ हर जरूरी चीज हमेशा अपने पास रखता है। उसकी नजर धीरे धीरे सिरहाने के नीचे गई। तकिए के नीचे एक हल्की सी उभरी रेखा थी, जैसे कुछ छिपाया गया हो। श्यामली के होंठों पर डेविल स्माइल और फैल गई। मिल गया रास्ता। वो दो उंगलियों के सहारे हल्के से झुककर बहुत धीरे, बहुत सावधानी से तकिए के नीचे हाथ सरकाने लगी। उसका दिल कानों में धड़क रहा था। चाबी के गुच्छे का ठंडा धातु सा स्पर्श महसूस हुआ। बस एक सेकंड और सच मेरे हाथ में होगा। लेकिन अगले ही पल कुछ हुआ। एक तेज मजबूत पकड़ ने उसके हाथ को जकड़ लिया, ऐसा जैसे लोहे का पंजा अचानक उसकी कलाई पर बंद हो गया हो। श्यामली का पूरा शरीर कांप उठा। दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा अभी बाहर गिर जाएगा। उसकी सांस अटक गई, आंखें फैल गईं। उसने देखा विश्वनाथ की उंगलियां उसकी कलाई पर कस चुकी थीं, पर उसके चेहरे पर नींद की भारी छाया थी। आंखें बंद, सांसें गहरी, लगता था वो अब भी सो रहा था। लेकिन उसकी पकड़ बेहद मजबूत, जैसे अब चेतन में भी वो हर खतरे को पकड़ लेता हो। शामली ने धीरे धीरे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और कसती गई। उसकी उंगलियां दुखने लगी। छोड़िए, उसने बेहद धीमे लगभग बिना आवाज फुसफुसाया, पर कोई जवाब नहीं। विश्वनाथ सोया हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी पकड़ जंजीरों जैसी थी। शामली की आंखों में डर और हताशा तैर गई, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने धीमे धीमे अपनी उंगलियां मोड़ी, कलाई को हल्का घुमाया और पूरी ताकत से हाथ छटका, और आखिरकार उसका हाथ उसकी पकड़ से छूट गया। उसने तुरंत एक कदम पीछे लिया, सांसें बेकाबू, दिल तेज। चाबी उसके हाथ में थी। धातु की खनक उसके पसीने से भीगे हाथ में महसूस हुई। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, अब देखती हूं कौन रोकता है मुझे। कैमरा जूम। विश्वनाथ का चेहरा शांत, पर उसके हाथ की उंगलियां अभी भी थोड़ी सिकुड़ी हुई, जैसे उसे जाने देने की इच्छा नहीं थी। कमरा फिर उतना ही शांत, पर हवा में तूफान का वादा था। शामली के हाथ में चाबी थी, ठंडी धातु, लेकिन भीतर आग सुलगाए हुए। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो डर नहीं इरादे से पैदा होती है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। कमरे की लकड़ी की फर्श उसके कदमों के नीचे बहुत हल्के हल्के चरमराई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, बस गलियारे की दीवार पर चलता एक पीला बल्ब लंबी खिंची हुई परछाइयां बना रहा था। चाबी उसकी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई थी और दिल उसके कानों में धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसके भीतर आवाज गूंज रही थी, आज मैं सच जानकर रहूंगी, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शांत हवेली, गहरी रात और वो अकेली। उसके होठों पर फिर वही शैतानी मुस्कान आई। देखते हैं विश्वनाथ जी, अब कैसे रोकेंगे। वो आखिर उस दरवाजे के सामने खड़ी हुई। वही वही डरावनी खामोशी, वही बंद पड़े कमरे की घुटन, जैसे दीवारें सदियों से किसी चीख को कैद किए बैठी हों। उसने धीरे से कांपते हाथ से चाबी ताले में डाली। धातु की हल्की सी क्लिक की आवाज उठी, चाबी घूमी, ताला खुला। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे अभी छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने कुंडी पर हाथ रखा, खट, कुंडी खुल गई। अब बस एक कदम, बस एक धक्का और दरवाजा उसके सामने खुल जाएगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फुसफुसाई, शामली अब पीछे मत हट। उसने धीरे धीरे दरवाजा धक्का देने को हाथ बढ़ाया। दरवाजा बस खुलने ही वाला था। रोमांच हवा में तैर रहा था।